मोबाइल वाणी सुन रहे तमाम श्रोताओं को रंजन का नमस्कार। श्रोताओं, इस वक्त मैं मुंगेर जिले के अब्दुल हमिद चौक पे हूँ और इस चौक पे सीएनआरसी और एनपीआर के विरोध में अनिश्चितकालीन धरना का प्रदर्शन किया जा रहा है और इस दौरान हमारे साथ एक युवा मौजूद हैं। आइए इनसे परिचय लेते हैं और जानते हैं कि ये विरोध प्रदर्शन किस लिए हो रहा है। बताएं आपका नाम परिचय।
मेरा नाम शकीब है और मैं एक मूवमेंट हम लोग चलाते हैं यूनाइटेड अगेंस्ट हेट, मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ। एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हूँ बेसिकली मैं और फ्रीलांस जर्नलिस्ट भी हूँ। एक्चुअली ये धरना जो है इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये हमसे ज्यादा इस सरकार को सोचना चाहिए कि आज 1.5 महीने से ज्यादा का समय होने को आया है और पूरे भारत में जिस तरह से लोग सड़कों पर निकल रहे हैं और इस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बेसिकली ये सरकार के खिलाफ नहीं है, ये जो सरकार ने इस काले कानून को इम्प्लीमेंट करने की बात की है उसके खिलाफ है। और ये संविधान का जो बेसिक प्रियम्बल है, जो बाबा साहब का संविधान है, जिस संविधान के तहत भारत एक संपूर्ण गणराज्य बनता है और इस संपूर्ण गणराज्य की पहचान जो है पूरी दुनिया में एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य की होती है, उस धर्मनिरपेक्ष गणराज्य की जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके ऊपर कहीं ना कहीं ये काला कानून जो है वो चोट करता है। तो स्वाभाविक है कि जो भारतीय नागरिक है और जिसके अंदर इस संविधान के प्रति ईमानदारी से आस्था है, इज्जत है, संविधान के प्रति इज्जत है, और जो अपने आप को इस भारतीय संपूर्ण धर्मनिरपेक्ष गणराज्य का नागरिक मानता है, उसको ये पीड़ा होनी स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं जो सांझी विरासत अगर हम कह सकते हैं तो हमारे पुरखों ने हमको दिया है आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों से इस देश को आजाद करवा के। वहां राम प्रसाद भी थे, अशफाक भी थे, वहां गांधी भी थे, हसरत मोहानी भी थे। तो ये जो एक कॉकटेल था, ये जो एक माहौल था कि वो एक भारतीय होने के नाते इस देश की आजादी के लिए लड़े, तो हमको जो वो विरासत दे करके गए हैं तो अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस विरासत को बचाए रखें जो हमारे पुरखों ने, हमारे आबाओ अजदाद ने, हमारे एंसेस्टर्स ने हमको दिया है। तो उस विरासत को बचाने की दरअसल ये लड़ाई है और मैं चाहता हूं कि मुंगेर की आवाम इस धरने में जुड़े, अपनी आवाज बुलंद करे और सरकार का जो पक्ष है, आप इस पूरी क्रोनोलॉजी को समझिए। क्रोनोलॉजी अमित शाह साहब यूज करते हैं, तो क्रोनोलॉजी को समझिए कि अमित शाह साहब संसद में कहते हैं कि एनसीआर होगा, एनपीआर होगा और ये सारी चीजें होंगी। प्रधानमंत्री रामलीला मैदान से सार्वजनिक मंच से कहते हैं कि एनसीआर जैसी कोई, एनआरसी जैसी कोई बात नहीं है। तो आप ये समझिए कि अरे भाई, आपका तो अपने बीच में कोऑर्डिनेशन सही नहीं है। गृहमंत्री बोल रहे हैं होगा, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं नहीं होगा, राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में बोलते हैं होगा, आप कहते हैं नागरिकता देने का कानून है, लेने का कानून नहीं है। तो आप हमको एक बात बताइए कि नागरिकता देने की बात जहां तक है तो भारत में किसने आपको मना किया है कि किसी दूसरे देश से आए हुए धार्मिक जो प्रताड़ित लोग हैं उनको आप नागरिकता नहीं दें। अदनान सामी को आपने, पाकिस्तान से आया हुआ अदनान सामी, उसको आपने नागरिकता दे दी, कितनी से विरोध की आवाज उठी मुझे बता दीजिए। कोई एक भारतीय नागरिक, कोई एक भारतीय पॉलिटिकल पार्टी, किसी एक राजनेता ने आपको इस बारे में भाव बोला, कहा हो कि हम जो है इसको नागरिकता नहीं दे। तो जी,
यहाँ पे मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी एक खास, एक बहुत बड़े तबके को ये भी लग रहा है कि ये किसी खास मजहब को इसमें जो है टारगेट किया जा रहा है, आपको क्या लगता है कि इस कानून से एक खास मजहब को ही अगर असर पड़ेगा या फिर इसके जद में और भी कौन से लोग आएंगे?
इसके जद में एक खास मजहब जो आप बता रहे हैं ना, ये खास मजहब दरअसल एक जैसे चाणक्य की एक राजनीति होती है, चाणक्य की जो नीति होती थी ना सियासत की, वो एक काल्पनिक दुश्मन को हमेशा एक बड़े समुदाय के सामने खड़ा रखता था। क्योंकि ये जो है ना, ये जो पॉलिसी है ना, एक बड़े समुदाय के जहन पे, दिमाग पे कब्जा जमाए रखने के लिए बहुत जरूरी होता है कि आप उसके सामने काल्पनिक दुश्मन को खड़ा करें। तो ये जो मुसलमानों की बात हो रही है ना, ये बेसिकली इस मुल्क के एक बड़े तबके के जहन पर और दिमाग पर कब्जा जमाए रखने की एक बात है। इसके जद में बेसिकली इसका जो परिणाम होगा, इसका परिणाम वो लोग सबसे ज्यादा भुगतने वाले वो लोग होंगे जो गरीब तबका है, दिहाड़ी मजदूर। आप एक बार इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि इस मुल्क के अंदर 30 करोड़ से ज्यादा लोग भूमिहीन हैं, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, वो कहां से डॉक्यूमेंट दिखाएंगे आपको? आप हमारे यहां से 1.5 किलोमीटर दूर आप किला का गेट पार कीजिए, आपको बराबर की आबादी शहीद स्मारक के सामने में इतने सारे लोग हैं, आपको सैकड़ों की तादाद में लोग मिलेंगे जो पन्नी डाल के सड़क पे सो रहे हैं, उनके पास क्या डॉक्यूमेंट है कौन, और वो कौन से मुसलमान है? तो सवाल ये कि ये कहीं ना कहीं जो भारत का जो गरीब तबका है, मेहनत कश तबका है, दिहाड़ी मजदूरी वाला जो तबका है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से अटैक है और सरकार बेसिकली मुसलमानों को सामने रख के एक बड़ा हित साधने की कोशिश कर रही है।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। मोबाइल वाणी से मैं रंजन, धन्यवाद।